श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र दुर्गम काज बनाए के
श्री साई राम। बहुत पहले की बात है, ब्रह्मपुत्र नारद जी महाराज किसी राजा के राज्य में पहुंचे। वहां के राजन ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया, उनसे पूछा कि मैं अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हूं, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, क्या आप कदापि मेरी पुत्री की हस्तरेखाओं को देख के ये बता सकते हैं किस तरह का पति उनको मिलेगा, कब विवाह होगा? कहते हैं नारद जी ने जैसे ही उस राजकुमारी के हाथों को छुआ, उनके हाथों की रेखाओं को देखने का प्रयास किया, मन के अंदर एक विचार कूंदा, इतनी सुंदर राजकुमारी है ये, काश इससे विवाह होता मेरा। फिर उन्होंने राजकुमारी को बताया कि आपका पति किस प्रकार का होगा, विवाह कब होगा, कैसे होगा आदि आदि, और मन ही मन सोचने लग गए काश मेरा विवाह इस राजकुमारी के साथ हो जाता। कहते हैं नारद मुनि वहां से चले गए, राजा ने घोषणा कर दी कि उनकी राजकुमारी का स्वयंवर अगले सप्ताह इस जगह पे होगा। आसपास के सारे राजाओं को संदेश भेज दिया गया, जो भी उस समय में भाग लेना चाहता हो आ सकता था। नारद मुनि के मन में इच्छा इतनी प्रबल थी, वे दौड़ते हुए नारायण के पास पहुंचे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले हे नारायण, मैं आपका भक्त हूं, आपसे कुछ चाहता हूं। भगवान हरि विष्णु नारायण बोले, भक्त बोलो क्या चाहते हो? हे प्रभु, मुझे कुछ दिन के लिए या केवल उस एक दिन के लिए हरि रूप दे दो। नारायण ने कहा तथास्तु। नारद मुनि ने सोचा जिस दिन स्वयंवर है उस दिन मैं अगर भगवान विष्णु का रूप लेके, भगवान हरि का रूप लेके वहां पहुंच जाऊंगा, वह कन्या वह राजकुमारी निश्चित है मुझसे ही विवाह करेगी, क्योंकि भगवान विष्णु से लेके कोई ज्यादा सुंदर, कोई ज्यादा हैंडसम है ही नहीं। कहते हैं नारद मुनि समय वन में पहुंच गए, पंक्ति में बैठे हुए हैं, राजकुमारी हाथ में फूलों की माला लेके आई। जैसे ही वह नारद मुनि के सामने पहुंची, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्हें लगा कि अभी मेरे गले में वरमाला डालेगी, लेकिन राजकुमारी वहां से हंसकर आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा कि शायद राजकुमारी ने मुझे ठीक से देखा नहीं है, वहां से उठ के कुछ कुर्सियां आगे जाके बैठ गया। राजकुमारी फिर उनके सामने आई, फिर हंस के वहां से चली गई। नारद जी को हैरानी हुई, सोचा शायद इस बारे मेरे को ठीक से देखा नहीं है। फिर वे उठ के आगे जाके बैठ गए। कहते हैं राजकुमारी फिर सामने आई, हंस के वहां से चली गई। वहां पर सभी लोग भी हंसने लग गए, एक मजाक बन गया। नारद जी ने देखा ये क्या, दूसरे कोने में वो भगवान विष्णु स्वयं बैठे हुए हैं। कहते हैं राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध आया, और वहां पर लोग नारद जी को देख के हंस रहे थे। किसी ने कहा भैया तुम जाके जरा अपना मुख तो देखो, उन दिनों दर्पण तो नहीं होते थे, लेकिन अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब माफ कीजिएगा, आप जाके देख सकते थे कोई पानी में, लेक में, पॉन्ड में, सरोवर में। कहते हैं नारद जी एक सरोवर में पहुंचे, उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा, देखा कि उनका मुख बंदर की तरह है, और क्रोध आया, ये क्या किया भगवान नारायण ने, मेरे को बंदर का रूप दे दिया, और संयम वन में पहुंच गए। उल्टे पांव दौड़ के पहुंचे वैकुंठ धाम हरि नारायण के सामने। बोले नारायण ये आपने क्या किया, आपने मुझसे धोखा किया है, मैंने आपसे एक दिन के लिए हरि रूप मांगा था और आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। मैं उस स्त्री से मिलने के लिए तड़प रहा था, मैं आपको श्राप देता हूं, जिस प्रकार से मैं इस स्त्री के लिए तड़प रहा हूं उस प्रकार से आप भी स्त्री के लिए तड़पेंगे, आपको मानव का रूप लेना पड़ेगा और आप अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे कुछ समय के लिए। हे नारायण, तब आपको वानर की सहायता लेनी पड़ेगी अपनी पत्नी को मिलने के लिए, एक बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी अपने को मिलने के लिए। कहते हैं थोड़े समय के पश्चात नारायण जी को ग्लानी महसूस हुई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने नारायण को शराब दे दिया। नारायण हंसने लग गए, बोले नहीं वत्स, नहीं बख्स, तुमने ठीक किया है, ये आने वाले समय के लिए एक कथा रची गई है। कहते हैं त्रेता युग में भगवान विष्णु अपने सातवें अवतार में, राम अवतार में जब धरती पर आए, माता सीता से जब वो अलग हो गए, जब रावण सीता माता को उठा के ले गया, भगवान राम को एक वानर की सहायता लेनी पड़ी सीता माता को खोजने के लिए, वो वानर का नाम था हनुमान। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, अंजनी नंदन हनुमान, केसरी नंदन हनुमान। हनुमान जी के पिता का नाम तो था केसरी, माता का नाम अंजनी, लेकिन पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है जब भगवान दशरथ, जब उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में माता कौशल्या और माता कैकेयी बैठी थी, और माता सुमित्रा दोनों रानियों की सेवा कर रही थी। उस यज्ञ के पश्चात वहां पर एक देवता प्रकट हुए, उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, उन्होंने रानियों को बोला ये प्रसाद को ग्रहण कर लो, इसको करने से आपको गर्भ की प्राप्ति होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं माता कौशल्य ने सोचा देखो सुमित्रा ने मेरी कितनी सेवा करी है, उन्होंने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद माता सुमित्रा को दे दिया, और दूसरी ओर माता कैकेयी ने भी अपने प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद माता सुमित्रा को दे दिया। अर्थात माता सुमित्रा के पास प्रसाद दो जगह से आया, माता कौशल्या से, माता कैकेयी से। कहते माता कौशल्या का पुत्र हुआ श्री राम, माता कैकेयी का पुत्र हुआ श्री भरत, और माता सुमित्रा के दो संतानें हुई लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहा जाता है माता कैकेयी जब प्रसाद ग्रहण करने वाली थी, वहां पर एक पक्षी आया, थोड़ा सा प्रसाद अपनी चोंच में लेकर चला गया। जंगल के रास्ते से उड़ता हुआ जा रहा था, पहाड़ियों के रास्ते से उड़ता हुआ जा रहा था, कहीं पर नीचे वहां पर माता अंजनी बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। वहीं पर वो प्रसाद पक्षी के चोंच से गिरा, माता अंजनी के हाथ में आया। उन्होंने सोचा शायद पवन भगवान ने वायु भगवान ने उनको प्रसाद दिया, उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था हनुमान। अब आप देखिए महाराज दशरथ की चार संतानें राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और दूसरी ओर हनुमान। जो माता सुमित्रा को प्रसाद मिला था उससे राम हुए और लक्ष्मण हुए दूसरी ओर, जब उन्होंने अपना आधा भाग प्रसाद का सुमित्रा को दिया था, इसलिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनी। दूसरी ओर माता कैकेयी की संतान थी भरत, दूसरी ओर जिन्होंने प्रसाद दिया था सुमित्रा को, वहां से वो शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनी। और जो पक्षी प्रसाद लेके गया था माता कैकेयी से, वहां से हनुमान की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहीं पर आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में भगवान राम भरत से कहते हैं तुम, भगवान राम माफ कीजिएगा, भगवान राम हनुमान से कहते हैं तुम मम प्रिय भरत समाना, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। कहते हैं बालपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। एक बार उगते हुए सूर्य को देखा, भूख लग गई, सोचा कि फल है, आसमान में उड़ते हुए गए और उस सूर्य को अपने मुख में रख लिया। संकट मोचन में आपने पढ़ा होगा बाल समेर रवि भाषी लियो तब तीनू लोक भयो अंधियारो ताही सोत रात भयो जग को ये संकट का हौस जात न टारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भाषी लियो तब, बाल समय में रवि को बस लिया, तीनों लोक में अंधेरा छा गया था। कहते हैं वहां पर राहु देव जी ने इंद्र से शिकायत करी, ये क्या है, केवल सूर्य को निगलने का अधिकार मेरे को है। कहते हैं इंद्र भगवान ने क्रोध में आके व्रज से आक्रमण किया हनुमान जी के ऊपर और हनुमान जी बेहोश हो गए। दूसरी ओर वायुदेव को यह बात मालूम हुई, बड़े क्रोधित हुए कि मेरा पुत्र, उसे पुत्र मानते थे अपना, ये मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को ऐसे प्रहार किया गया। कहते हैं वायुदेव ने वायु को रोक दिया। जब वायु रुक गई तो सारे संसार में त्राही त्राही मच गई। जब वायु रुक गई तो सारे संसार में लोग ऑक्सीजन के लिए तरसने लग गए, सांस लेने के लिए तड़पने लग गए। विचार कीजिए जरा आप। सब लोगों ने वायुदेव से प्रार्थना करी, भाई माफ कीजिए, आप वायु का संचालन कीजिए, हम आपके पुत्र को होश में ले आते हैं, उसको वरदान देते हैं। सभी ने कुछ न कुछ देवी देवताओं ने वरदान दिया, लेकिन वहां पर हनुमान जी को आठ सिद्धियों की प्राप्ति हुई, इसलिए कहते हैं अष्ट सिद्धि दाता। पहली सिद्धि अणिमा, अणिमा शब्द आया अणु से अर्थात छोटा, यानी कि जब वो चाहे अपना आकार अपना साइज छोटा कर सकते हैं, अणु की भांति लाइक एन एटम। दूसरी सिद्धि महिमा, जब वो चाहे अपने शरीर के आकार को बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। गरिमा तीसरी सिद्धि, वे अपने शरीर को बहुत भारी कर सकते हैं। चौथी लगीमा, वे अपने शरीर को बहुत हल्का कर सकते हैं। पांचवी प्राप्ति, यानी कि वह जहां भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल प्लेसेस, उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। छठी प्रकम्पे अर्थात रियलाइजेशन ऑफ द डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। सातवीं ईश्वतत्व, यानी कि सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं, पोजेसिंग द लॉर्डशिप। और आठवीं है वशिता, यानी कि सबको अपने वश में कर सकते हैं। ये आठ सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हुई, नाम हो गया अष्ट सिद्धि दाता। कहते हैं हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। जब पहली बार वह राम और लक्ष्मण से मिले एक ब्राह्मण के रूप में, लगता था किसी स्कॉलर से बात कर रहे हैं। इससे हम आगे बढ़े, इससे पहले कि आगे बढ़े जरा ध्यान दीजिएगा। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम जब संकट मोचन पढ़ते हैं, या हम जब बजरंग बाण पढ़ते हैं, श्री हनुमान सत्वन पढ़ते हैं, हम बारंबार ये सोचते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करने के लिए आए। संकट मोचन हनुमान जी, संकट को मोचन कर देंगे, संकट को हटा देंगे। विचार कीजिएगा, अगर हनुमान से इस प्रकार की चीज हम चाहते हैं, हमें हनुमान बनने का प्रयास करना होगा, उस प्रकार के गुण अपने अंदर लाने होंगे। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे, मिनिस्टर थे। हनुमान जी के गुण क्या थे? पहले ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड, हमेशा उनका ध्यान केंद्रित था जो चीज उनको काम करना है। दूसरा डिवोशन, भक्ति से परिपूर्ण। तीसरा कम्युनिकेशन, किस प्रकार से किससे बात वार्तालाप की जाए। चौथा कॉम्पिटेंस, पांचवा करेज, छठा डेडिकेशन। आप जरा सोचिए, क्या हमारे अंदर ये सारे गुण हैं? जब हम इन गुणों को अपने भीतर लेके आते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आप हनुमान का अपने भीतर आवाहन कर रहे हैं। तब आप कह सकते हैं आप हनुमान को अपने भीतर लेके आ रहे हैं, अपने इर्द गिर्द ला रहे हैं, अन्यथा हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं। वो विचार कीजिएगा, कहते हैं हनुमान जी जब भारत के दक्षिण छोर पे भगवान राम के साथ खड़े थे, भगवान राम ने कहा कि मैं चाहता हूं कोई लंका जाके खोजे कि माता सीता वहां है या नहीं, कौन समुद्र को लांगेगा। वहां पर जामवत थे, वो बोले भाई मिले तो बड़ा मुश्किल है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकता। नल और नील थे, विभीषण था और वानर सेना थी, कोई इतनी लंबी छलांग लगाने को तैयार नहीं था। भगवान राम ने हनुमान क्यों देखा, बोले हनुमान। हनुमान जी एकदम उठ के बैठ गया, बोले जी प्रभु मैं जाऊंगा। सब लोग कहने लगे हनुमान तुम कभी इतना लंबा उड़े नहीं हो, तुम कैसे जाओगे, हाउ वुड यू मैनेज। हनुमान जी बोले देखो भेजने वाले भगवान राम है, माता सीता की खोज करने वाले प्रभु राम है, सब काम करने प्रभु राम है, मैं तो सेवक हूं, जो काम कराने वही कराएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ सरेंडर, दैट इज द लेवल ऑफ डिवोशन, दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट, दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन। विचार कीजिएगा, अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। एक पल के लिए मन में यह विचार नहीं आएगा क्या होगा। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने कहा कि तीन प्रकार के दूत होते हैं, मैसेंजर्स। पहले वो हु डू नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ द मास्टर, पहले वो जो अपने स्वामी के आदेश को समझते ही नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। अगर आपको आपके गुरु जी ने कुछ काम करने को बोला, आपको समझ नहीं, आपने हाँ हाँ बोल दिया। दूसरे दूत होते हैं हु डज डिट्रीमेंट ऑफ द वर्क, जो लोग गुरु के अपने स्वामी के अपने गुरु के आदेश को सुनते तो हैं लेकिन उल्टा काम करके आ जाते हैं। और तीसरे होते हैं हु अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द सिग्निफिकेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर एंड कैरी आउट अकॉर्डिंगली टू अचीव द गोल। तीसरे होते हैं जो अपने मास्टर के अपने स्वामी के अपने गुरु के आदेश को समझते हैं, उसके पीछे क्या कारण, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम क्या पाना चाह रहे हैं, सब समझते हैं। फिर उसको पाने के लिए ऑब्जेक्टिव लॉस लूज ना हो जाए, उस प्रकार चलते हैं। ये हनुमान जी से तीसरे प्रकार के मैसेंजर, तीसरे प्रकार के भक्त, तीसरे प्रकार के डिवोटी, तीसरे प्रकार के दूत। जरा विचार कीजिएगा, हनुमान जी के समय के वर्ड है, उनके अपने शब्द हैं, रामा वर्ड मेड मी वेरी एफिशिएंट। रामा के शब्द, मैं भगवान राम के जो शब्दों को सुनता हूं मेरे अंदर एफिशिएंसी आ जाती है, मेरे अंदर एक वाइटलिटी आती है, एक एनर्जी आती है, एक शक्ति का प्रवाह होता है। क्या हम अपने गुरु की वाणी को सुन के अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस करते हैं या नहीं? तो थिंक इट ओवर। हनुमान जी लंका पहुंच गए, हनुमान जी ने माता सीता की खोज कर ली अशोक वाटिका में, काम खत्म हो गया था। वो चाहते तो वहां से लौट के आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विचार किया भगवान राम यहां पर आएंगे माता सीता को लेने के लिए, लेट मी स्कैन लंका, मैं अंदर लंका को देख लूं, समझ लूं, यहां का नक्शा समझ लूं, यहां का गाइड मैप ले लूं, यहां कितनी इमारतें हैं, कितने महल हैं, कहां पर डिफेंस का सामान पड़ा है, कहां पर आर्टिलरी पड़ी है, कहां पर गोला बारूद पड़ा है, कहां पर दुश्मन पड़ा हुआ है, कहां पर उनकी आर्मी सेना बैठती है उठती है, कौन ज्यादा प्रभावशाली है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मैं समझ लूं। हनुमान जी चाहते तो रावण को मार सकते थे, हनुमान जी को वरदान था कि उनको कोई नहीं मार सकता, वो अमर रहेंगे, वो आज भी हैं। हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा इसलिए क्योंकि भगवान राम का आदेश था, खाली पता करके आना था माता सीता कहां पर है। जो श्रेय, जो ऑनर भगवान राम को मिला रावण को मारने से, हनुमान जी नहीं चाहते थे उसको छीनना। कहते हैं हनुमान जी ने लंका को देखा, जहां जहां जल के सोत्र थे समाप्त कर दिए, जहां जहां जल इकट्ठा था बिखेर दिया, अशोक वाटिका को तोड़फोड़ दिया, केवल वो स्थान छोड़ दिया जहां माता सीता थी। उसके बाद जब इंद्रजीत ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी चाहते तो उस अस्त्र से बच सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा ना साबित हो जाए इसलिए अपने आप को जानबूझ के पकड़वा दिया। रावण और उनके उपस्थित लोगों ने सोचा कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। आप जानते हैं हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार थे और माता पार्वती उनकी पूंछ में वास करती थी। माता पार्वती स्वयं अग्नि, अग्नि अग्नि को कैसे जलाएगी? उन्होंने पूंछ में आग लगाने के लिए कपल लपेटना शुरू किया, वह अपनी पूंछ का विस्तार करने लग गए। उनका वरदान था अपना विस्तार कर सकते हैं, अपने को बड़ा कर सकते हैं, अपना विस्तार किया उन्होंने, अपनी पूंछ का विस्तार किया, इतनी लंबी पूंछ हो गई कि उस पर कपड़ा लपेट लपेट के लपेट लपेट के लोग थक गए, फिर उसमें आग लगा दी। हनुमान जी चाहते थे अपनी पूंछ को सीधा सागर में डुबकी लगा के बुझा सकते थे, ऐसा नहीं किया, उन्होंने लंका को जला दिया ताकि रावण की शक्ति आधी से भी कम हो जाए जब राम यहां लड़ने पहुंचे। साथ में रावण के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाए कि अगर एक वानर में इतनी शक्ति है और राम तो अपनी वानर की सेना को लेकर आ रहे हैं, उनमें कितनी ताकत होगी। विचार कीजिएगा, कहते हैं राम जी माता सीता के पास पहुंचे, बोले माते मेरे कांधे पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूं वापस राम जी के पास। माता सीता ने मना कर दिया, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी पराए मर्द को छू नहीं सकती हूं। लुक एट द लेवल ऑफ मोरालिटी। कहते हैं हनुमान जी वापस पहुंच गए भारतवर्ष, उस स्थान पर जिसको आज रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम को बताया कि माता सीता यहां पर है, अशोक वाटिका में है, और पूरा वरदान सुना दिया। अब बाद में रामेश्वरम ते लंका था सेतु बांधा गया, पूरी सेना वहां पहुंची, रावण को मारा गया, कुंभकर्ण को मारा गया, मेघनाथ को मारा गया। उसके बाद भगवान राम बोले, हनुमान क्या तुम अशोक वाटिका जाके माता सीता कोई संदेश दे सकते हो कि मैंने रावण को मार दिया? और उससे पहले की कथा भी आप जानते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, भगवान हनुमान लंका से उठ के हिमालय पहुंचे संजीवनी बूटी को लेने के लिए, पूरे पर्वत को उठाकर चले गए। लक्ष्मण को प्राण देने वाले हनुमान थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसकी महिमा अलग है। उसके पीछे पीछे भगवान राम की कृपा थी। कहा जाता है जो लक्ष्मण मूर्छित थे, संजीवनी बूटी उनको सुंघाई गई, उनको दवाई पिलाई गई, वो नहीं उठे। वहां पर जामवंत ने कहा कि भगवान राम के चरण की धूलि थोड़ी मिला के अगर दवा दी जाए शायद जाग जाएं। जैसे भगवान राम के चरण की धूलि लक्ष्मण के मुख में लगाई गई, लक्ष्मण राम राम करते उठ के बैठ गया। हम बात करें अशोक वाटिका की, यहां पर हनुमान को कहा गया कि तुम जाओ माता सीता को संदेश दो कि मैंने रावण को मार दिया है, उनसे मैं जल्दी अयोध्या ले जाऊंगा। कहते हैं हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, माता सीता को ये संदेशा दिया, माता सीता बड़ी प्रफुल्लित हुई, उन्होंने बहुत ही आशीष दी, बड़ा आशीर्वाद दिया हनुमान को। हनुमान चुपचाप खड़े रहे। जब माता सीता बोली, हनुमान तुम भगवान राम के लाले बन जाओ, मे यू बिकम द फेवरेट ऑफ लॉर्ड रामा। कहते हैं भगवान हनुमान उछलने लगे, कूदने लगे, प्रसन्न हो गए। क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे हम अपने गुरु के, अपने परमात्मा के, अपने आराध्य देव के लाडले बन जाए, फेवरेट बन जाए? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना। विचार कीजिएगा, जब माता सीता ने को यह संदेशा मिला कि रावण मर गया है, राम जी पहुंचे हुए हैं, तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हनुमान तुमने मुझे मंगल समाचार दिया है, हनुमान यू हैव गिवन मी ऑस्पिशियस न्यूज, आज के बाद हर मंगलवार को तुम्हारी पूजा होगी। कहते हैं तब से हर मंगलवार को हनुमान की पूजा की जाती है। विचार कीजिएगा, हनुमान जी से एक बार पूछा गया तुम कौन हो, बोले फिजिकल लेवल भौतिक तरीके से मैं राम जी का सेवक हूं, इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि के ओर से आई एम द स्पार्क ऑफ डिवाइन, मैं एक दिव्यता का कण हूं, आत्मिक लेवल में आत्मा की ओर से आई एम सेम एज गॉड, आई एम गॉड, मैं परमात्मा दोनों एक हैं। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी के गुणों को अपने भीतर लेके आना है। जय श्री साई राम।
चरण शरण संकट से